और जन्नत में क्या है, मेरा दिल करता है, मैंने किया हुआ पहले और बहुत जगह, लेकिन आप सब के साथ भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह कि जन्नत की औरतें कैसी होंगी। चले आप अपने नाम के साथ सोचें, आप कैसी होंगी। पहले ये बताएं कि आप दुनिया में अपनी मौजूदा शक्ल सूरत से राज़ी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान पढ़ के आए अल्हम्दुलिल्लाह, पहले कोई नहीं था। हमारी एक स्टूडेंट है माशाल्लाह, कुरान से उसने, अल्लाह ने उसको जोड़ा, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ी, मुझे मिलने आई किसी दूसरे शहर से इधर ही लाहौर में। शी इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट, और जो उन्होंने मुझे कहानियाँ सुनाई, आप मान नहीं सकते कि लोग आज कितने ब्यूटी कॉन्शियस हो गए। बालों का इलाज, चेहरे का इलाज, पोर्स खुल गए, अब नाक पतली, अब लंबी, अब ये पिंपल्स का इलाज, अब फेयर कॉम्प्लेक्शन, ये वो। मुझे कहती है मुझे टाइम दे, मैं सारा कुछ आपके साथ भी कर दूँ। मैंने कहा मुझे नहीं छोड़ने आप, मैं इसी हाल में खुश हूँ जैसा अल्लाह ने मुझे बनाया। यानी वो कहती हैं कि दिन रात मेरे पास अपॉइंटमेंट्स होती हैं, और सिस्टर्स हज़ारों नहीं लाखों रुपया देती हैं, और वाकई शक्लें बदल जाती हैं। तो मैंने कहा ये बताओ कि वो रहता कब तक है सर? तो उसने कुछ वक्त बताया, तो मैंने कहा व्हाट्स नेक्स्ट? कहती उसके बाद दोबारा करें। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप देखिए कि जन्नत की औरत इतनी हसी, इतनी हसीन होगी। हदीस में आता है कि जन्नत की औरत, जैसे आज के दौर में आप कहें कि क्रिस्टल की डॉल, शीशे की बनी हुई, जब उसके जिस्म में शरबत जाएगा तो फरमाया, हदीस में है, ये सारी हदीसें मेरे पास मौजूद हैं। आप देखिए कि जन्नत की औरत इतनी खूबसूरत है कि हदीस में आता है कि अगर जन्नत की औरत इस दुनिया में झांक ले तो उसके चेहरे की चमक के आगे सूरज की चमक कम। कोई दुनिया का फेशियल ऐसा है? कोई पॉलिशर ऐसा है? कोई ब्राइटनर ऐसा है? आप कुछ भी कर करा लें, एक हफ्ता 10 दिन बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, फिर दोबारा आपको फिर ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी हसीन औरत, और हदीस में आता है कि अगर जन्नती औरत का दुपट्टा, उसका एक पल्लू सिर्फ, कोना जैसे ये एज होता है ना, जिस लास्ट कोना, इसको हदीस में इस तरह आपने करके दिखाया, यूँ ये अगर आसमान से नीचे लटका दिया जाए तो उस पर लगे हुए हीरे मोतियों के आगे सूरज की रोशनी मान पड़ जाए। देखिए जिसको नहीं मानना वो ना माने, वी डोंट माइंड, बट कुरान और हदीस में इसके रेफरेंसेस और हर चीज़ मौजूद है। और जन्नत की औरत की निगाहें झुकी हुई, शर्मीली, बड़ी बड़ी आँखें, और जेवरात कैसे होंगे? जहाँ तक वजू के निशान है वहाँ तक उसकी खूबसूरती होगी, उसके जेवर होंगे। और दुनिया में तो औरतें पहनती हैं ना जेवर, लेकिन आपने सुना होगा पिछले दौर में बादशाह भी पहनते थे। जन्नत के मर्दों को भी जेवर पहनाए जाएंगे। एक शख्स को एक दफ़ा आपने देखा तो वजू करते हुए कोनियाँ यहाँ तक धोने की बजाय यहाँ तक धो रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने पूछा ये आप क्या कर रहे हैं? कहा अल्लाह के नबी अपनी चमक बढ़ा रहा हूँ और अपने जेवरों की जगह बढ़ा रहा हूँ। यानी ज़ाहिर है जहाँ तक पानी लगेगा वहाँ तक इसको मैं लेकर जाऊँगा, फिर इसी तरह खुशबूदार होंगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार कहा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरतुन, उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी। अब देखिए शौहर बीवी दुनिया में कितनी भी मोहब्बत क्यों ना करते हों, कुछ ऐसी नजास्तें होती हैं जिससे कभी कभी इंसान की तबीयत पसंद नहीं होता। कई कपल सिर्फ इसलिए भी खुश नहीं रह सकते, मसल मर्द स्मोकिंग करता है, बीवी को उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, स्वेटिंग है, और भी कुछ भी है। जन्नत में किसी किस्म की कोई सेक्रीशन नहीं होगी। सेक्रीशन में आप देखिए पेशाब पखाना तो हमने समझ ही लिया, बाकी चीज़ें भी नहीं होंगी। पीरियड्स नहीं होंगे जन्नत की औरतों को। तो आप कहेंगे अच्छा पीरियड्स नहीं होंगे तो फिर बच्चे होंगे, क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल होंगे। साहबा ने जब अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी जन्नत में हमारी औलाद होगी, तो आपने फरमाई अगर तू चाहे। कहा वो कैसे? कहा अगर किसी के दिल में ख्वाहिश आएगी कि अल्लाह मेरा दिल कह रहा है कि मेरा इधर बच्चा हो, फरमा उसकी ख्वाहिश के साथ ही उसकी बीवी प्रेग्नेंट होगी और साथ ही फौरन बच्चा पैदा होगा और बड़ा होकर उसके बराबर हो जाएगा। अब उसमें कोई वो नौजिया नहीं है, मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, और वहाँ वो 9 महीने की तकलीफ़ें नहीं हैं, और फिर बच्चे को पालने की मुश्किलात नहीं है, और वो सब कुछ नहीं है जो कि दुनिया में लगा हुआ है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सोने के कंगन और सब रेशम के लिबास पहनकर तकियादार मसनदों पर लोग बैठे होंगे। सूरत कहफ की आयत 31 नोट कर लें। दुनिया में मेरा ख्याल है कि हर दौर में ग्रीन कलर इन रहा, और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ग्रीन पे गोल्डन का। कुरान ने ये कॉन्सेप्ट दिया, सब्स कपड़े और उसके ऊपर गोल्डन रंग का काम हुआ है, और तकिए लगाकर बैठे, ज़रा सा सोचिए तो सही, मतलब आपकी क्या इज्जत होगी और क्या आपकी उस वक्त शान होगी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ऐसी औरतें बन जाएंगी वो कि जिनको देखकर ये مثال ہے کہ اب آپ سوال کریں گے کہ کیا ہم ہی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی, بوڑھی تھی. کہا اللہ کے نبی میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے کہا جنت میں بوڑھیاں نہیں ہوں گی. تو وہ رونے لگ گئی. آپ نے کہا تو جوان ہو کر جائے گی. جو جنت کی ایک اور خوبصورتی ہے کہ اس میں بیماری, بڑھاپا اور موت نہیں ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. بیماری کس کو اچھی لگتی ہے؟ اور میں یہاں بیٹھ کر 3 سیکنڈ اگر خاموش رہوں, ہم میں سے ہر ایک پوچھے اپنے آپ سے کیا کبھی بیمار ہوئے, لگی ہوئی کوئی بیماری, کوئی ظاہری, کوئی باطنی, کوئی قلبی, کوئی روحانی. کوئی ہوگا اللہ جس کو بچا لے, الحمدللہ کہ جس کے گھر میں ایک دوا کی گولی بھی نہ ہو. ورنہ میں نے تو دیکھا کہ لوگ اس وقت, یعنی جس ایک بہت بڑے پرابلم کا شکار ہے وہ بیماری ہیں, کچھ کی جسمانی, کو روحانی, کو سائیکلوجیکل. جنت میں کوئی بیماری نہیں ہوگی, پھر بڑھاپا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ بڑھاپا کمزوری کی علامت ہے. ہم اپنے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے نا کہ کبھی یہ کتنے صحت مند ہیں. اور بعض لوگ جب صحت مند ہوتے ہیں تو بہت ہی جابر ہوتے ہیں, کسی کو کچھ سمجھتے نہیں. لیکن جب وہی بوڑھی ساس پھر بہو کا ہاتھ تھام کے اور اس کے ہاتھ سے دوا کھانے کی محتاج ہو جاتی ہے, تو وہ پھر اس وقت وہ ساری انسان کی جو اکڑ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہاں کسی پہ بڑھاپا نہیں اور موت نہیں ہے. آپ سوچیں دنیا میں, آپ دسمبر کی 10 دن کی چھٹیوں پہ گئے, چلے ہم ڈزنی لینڈ جاتے ہیں, ہم نیاگرا فال دیکھنے جاتے ہیں, بچوں کو ساتھ لیا, خوب پیکج بنایا, ہر دن اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن کم ہو گیا. جب بھی کسی ہوٹل کا کوئی پیکج لے تو دل میں کیا ہوتا ہے, 3 دن, 5 دن, 7 دن, اور اسے زیادہ ہو تو سچی بات ہے ہم رہ بھی نہ سکیں. یہ ہمیں قدر تب آتی ہے گھر سے جب ہم باہر گئے ہوتے ہیں. لیکن عموماً ایسی جگہوں پہ جا کر احساس کیا ہوتا ہے کہ یہ دن رک جائے, وقت تھم جائے. لیکن آپ کو تو ایک دن گیا, پھر دوسرا بھی گیا. جنت کی سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ جو مل گیا وہ کبھی پلٹے گا نہیں. آپ جہاں جو چاہے دیکھنا چاہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں دکھا سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جنت کے گھر, میرا خیال ہے کہ ایک عورت کی کمزوری, اس کا ویک پوائنٹ اس کا گھر ہوتا ہے. ہم خود بھی اچھا لگنا چاہتے ہیں, ہم اپنا گھر بھی اچھا رکھنا چاہتے ہیں. جیسے مرد کو کہتے ہیں گاڑی سے پیار ہوتا ہے تو بیوی کو گھر سے ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا. جنت کے جو گھر ہیں اس کو محلات کہا گیا, قصر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوں گے, اور اس کا گارا تیز خوشبو والا مسک ہوگا, اور جو اس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے ہوتے ہیں نا, راکس اور چھوٹے پتھر, وہ موتی اور یاقوت ہو کے ہوں گے, اور جو مٹی اس میں ڈلتی ہے وہ زعفران کی ہوگی. یہ ترمذی کی روایت ہے. حدیث اس لیے بول رہی ہوں کہ میں اپنے پاس سے کوئی لفاظی نہیں کرنا چاہتی. اب آپ اپنے گھر کو سوچئے کیسا چاہتی ہیں. اور جنت عدن کے جو گھر ہے نا, عدن ایور لاسٹنگ ہیون, اس کا نام ہی ہے. ایک ریڈ, پھر دوسرا وائٹ پرل, اور تیسرا گرین. 3 رنگوں کے حدیث میں نام آتے ہیں کہ زمرد, یاقوت اور موتی سے مل کر ان کے گھر کی بریکس بنی ہوں گی. آپ کی شادی کا بڑا سیٹ کن موتیوں کا تھا؟ میرا گمان ہے کہ جس عمر میں ان کی شادی ہوئے گی تو ریڈ, گرین اور آفرڈ, یہی رنگ تھا. عموماً جڑاؤ سیٹ ایک دور ایسا تھا کہ اس میں یہی 3 رنگ چلتے تھے. آپ سوچیں بڑا سا گھر ہے اور وہ پورا ان موتیوں سے مل کر بنا ہے, کیسا ہوگا وہ گھر. اور جنت کے گھروں میں جوڑ نہیں ہے, جیسے ہم 2 دیواروں کو جوڑتے ہیں یا کتنے جوائنٹس ہوتے ہیں, آپ اسی روف کو دیکھ لیجئے. ایک موتی ہے, بیک موتی, اور اس میں کاروینگ کر کے انگریڈ, جیسے اندر سے سوراخ, جیسے تاج محل جس نے دیکھا اس کو پتا ہوگا کہ اس میں جوڑ نہیں ہے, ایک ہی پتھر کے اندر ہے سب کچھ. جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا اس میں کیا خاص بات ہے, پتھر کی بنی بلڈنگ ہے. تو پھر اس وقت جب انہوں نے بتایا کہ یہ ایک پتھر کے اندر کاروینگ کی گئی, اس میں جوڑ نہیں ہے, تو یہی دنیا میں اس کے عجوبہ ہونے کی ایک علامت ہے. جنت کے جو گھر ہوں گے اس کے اندر اس طرح سے سونے اور موتی اور چاندی کی چیزیں ہوں گی کہ آپ دیکھیے کہ تصور میں آتا ہے صرف یہ فینٹسی لینڈ. کبھی آپ نے بچپن میں کہانیاں پڑھی تھی الف لیلہ کی, الف لیلوی کہانیاں, پھر وہ اڑا, پھر اس کے پر تھے, وہ وہاں پہنچ گیا. یعنی امیجینیشن میں تو وہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی جو میں اور آپ یہاں سمجھنا چاہتے ہیں. فرمایا کہ جنت کے پھلوں میں سے اگر ایک خوشہ, یعنی گچھا, دنیا میں آ جائے, ساری مخلوق کھا لے گی, پھر بھی وہ ختم نہیں ہوگا. اور جنت کے درختوں کے سائے اتنے طویل ہیں کہ اس کے نیچے 100 سال تک ایک سوار اگر جاتا رہے گا تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. چلیے یہ بتائیے کہ آج کل یہاں پلاٹ کی ویلیو کیا ہے؟ آپ کہیں گے مختلف علاقوں میں مختلف. गुलबर्ग में ये है, तो मॉडल टाउन में ये है, तो बहरिया टाउन में ये है, तो गुजरांवाला में ये, ऐसे ही होता है ना। दुनिया में जो प्लॉट्स होते हैं उनकी कीमत जगह के अतबार से बदलती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में कीमत कैसी है, एक कोड़ा। वे कभी वो टांगे वाले के हाथ में एक चाबुक देखा होगा, बस उसको जिन में रखे। फरमाया कि जन्नत का एक कोड़ा रखने की जगह, यानी जस्ट मिसाल है कि इस हॉल में अगर एक या दस कोड़े हों तो नज़र भी ना आए, सिर्फ किसी को एक कोड़ा रखने की जगह मिल गई। फरमाया खैरु मिनत दुनिया व माफीखा, पूरी दुनिया और उसकी सारी चीज़ों को जमा कर लें, उससे भी बेहतर है सिर्फ एक कोड़ा रखने की जगह। और कितनी मिलेगी जन्नत ने दुनिया में किसी को जगह, आपको पता है? हम कितना बड़ा घर संभाल सकते हैं, दो किनार, चार, आठ, दस। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जितना बड़ा घर होता है हम अपने घर के मुख्तलिफ फ्लोर ही नहीं देख सकते। एक सिस्टर थी तो ज़रा सी उम्र बढ़ी तो घुटनों की दर्दें, फिर ऐसा ऐसा कमज़ोरियाँ, कहने लगी कितने महीने गुजर जाते हैं मैं ऊपर के पोर्शन में भी नहीं जा पाती, अब घुटनों में दर्दें होती हैं। मुलाज़मों पे घर है, जो कर दें कर दें। तो मुझे उस वक्त इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारी दुनिया जब बढ़ती है ना तो हम उसको इन्जॉय नहीं कर पाते। खाने कितने हैं हमारे पास, लेकिन वो लिस्ट साथ ही है कि ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। कभी बीमारियाँ छुड़ा देती हैं, कभी मोटापा छुड़ा देता है। जन्नत में ऐसी कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। और जन्नत के बर्तन, जन्नतियों के बर्तन सोने और चांदी के हैं, इसीलिए दुनिया में मना है कि दुनिया में नहीं खाओ सोने और चांदी के बर्तनों में, ये काफिरों के लिए है दुनिया में, तुम्हें असल में वहाँ जाकर मिलेंगे। इसलिए जायज़ ही नहीं है किसी सिल्वर प्लेटेड या गोल्ड प्लेटेड चीज़ में खाना। क्यों? कि इससे बंदे के अंदर एक बड़ेपन का एहसास होता है। अल्लाह चाहता है कि दुनिया में हम थोड़े से नीचे रहें, अपने आप को डाउन टू अर्थ करें। आप देखिए कि नबी सल्लम के पास क्या नहीं आ सकता था। फरिश्ते ने आकर कहा था कि अगर आप कहें तो अल्लाह ताला आपका घर सोने का बना दे, तो आपने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन पेट भर के खाऊं और अल्लाह का शुक्र करूं, और एक दिन भूखा रहूं और मैं उस दिन सब्र करूं। आपने जानबूझ के दुनिया कम ली। वजह क्या है कि दुनिया बुरी नहीं है। किसी ने मौलाना रूमी से पूछा था कि दुनिया क्या है, तो उन्होंने एक मिसाल दी थी कि एक कश्ती है वो कहाँ चलती है। उन्होंने कहा पानी में। कहा अच्छा ये बताओ कि अगर पानी भर जाए तो क्या होगा। कहा उसी पानी में वो कश्ती डूब जाएगी। कहा ये दुनिया, अगर दुनिया दिल से बाहर रहे और कश्ती ऊपर तरती रहे, ये तो हमारी आखरत का ज़्यादे रहा है। देखिए दुनिया ना हो तो हम दीन भी कैसे सीखें। गाड़ी ना होती आप यहाँ कैसे आते। अगर ये कमरा इतना बड़ा ना होता कि आप इसमें आते तो आप कहाँ बैठ के सुनते। कभी दुनिया को बुरा नहीं कहना चाहिए। असल बात यह है कि जब ये दिल में आ जाती है, ये हाथों में रहनी चाहिए, यूज़ कीजिए, आप करें, दूसरों को दें, उसके साथ शेयर करें, आजजी के साथ, तकब्बुर ना, बड़ाई ना, खुद पसंदी नहीं। आप देखिए कि हज़रत उस्मान गनी कितने दौलतमंद थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ, एक काफिला उनका मुल्क शाम में होता था ना, तो उसका आखिरी ऊँट जो था मदीना में होता था। आज भी जाकर देखिए 500 मील का फासला, इतनी दौलत थी। और अब्दुर्रहमान जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में सब कुछ दे दिया, जब हिजरत करने के लिए निकले, बीवी बच्चा साथ था, दौलत भी थी, अभी थोड़ा सा रुके तो ससुराल वालों ने रोक लिया, भाई तुम किधर जा रहे हो। कहा अल्लाह के रसूल के पास। कहा ये बीवी तुम्हें इसलिए नहीं दी थी, ये हमारी बेटी है, ये दर दर नहीं फिरेगी, इसको इधर छोड़ के जाओ। देखिए इस रास्ते में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। खैर कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी, बीवी को रोक लिया गया, अब आगे चले। थोड़ा सा गए तो अपने माँ बाप आ गए। कहा ये पोता कहाँ लेके जा रहे हो, ये हमारी नस्ल है। पोता भी दे दिया, अपना बेटा उनका पोता दे दिया, ले लो। थोड़ा सा आगे गए तो भाई आ गए। कहा ये माल दौलत क्यों जा रहा है, मिल के कमाया हुआ है, ये इधर लगेगा, अच्छा ये भी ले लो। और रिवायत में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो तन पे कपड़े भी बुरे नहीं थे, और कहा अल्लाह के नबी सिर्फ अपना ईमान बचा कर आया हूँ। तो आपने फरमाया कि अब्दुर्रहमान तूने नफ़े का सौदा किया। क्या उनका सब कुछ ख़त्म हो गया? ख़त्म नहीं हुआ। जब मदीना में आए अल्लाह के नबी ने भाईचारा बनाया एक महाजिर का एक अंसार के साथ। इन्होंने अपने भाई को जो अंसारी था उससे कहा कि मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त ऐसे ही हुआ था कि एक सपोर्ट सिस्टम बना दिया था कि एक दूसरे को सपोर्ट करता है, और उस तरह से इन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगा। दल्लूनी इला सूक़े, मुझे ख़बर दीजिए बाज़ार की। बाज़ार में गए, वहाँ से कोई पनीर या कपड़ा कुछ भी ऐसी चीज़ आती है, थोड़ा सा कुछ ख़रीदा जिसको आज की ज़ुबान में कहें कि होलसेल में ख़रीदा, और उसको जाकर दूसरी जगह में रिटेल में बेचा, दोनों में जो प्रॉफिट मिला वो घर लेकर आ गए। कुछ अरसा गुजरा मदीना में, फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ मालदार सहाबी थे। कितना माल इनको अल्लाह ने दिया कि जब इनकी वफ़ात हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फौत हुए थे, वसीयत करके गए थे कि मेरे माल में से अज़वाज मुतहरात को भी दिया जाएगा। वसीयत जितनी मर्ज़ी को कर ले, और आप जानते हैं कि यानी 33% जो 1/3 होता है उसके अंदर की जा सकती है। एक एक ज़ौजाए रसूल को इस तरह कुल्हाड़ों से तोड़ तोड़ कर सोने के डल्ले मिले थे। याद रखिए कि जब बंदा अल्लाह का बन जाता है तो इसका ये नहीं मतलब कि अल्लाह उसकी दुनिया ले लेता है, सिर्फ उसकी सोच बदल जाती है। उसको इस दुनिया को लेकर इससे अपनी आखिरत कमाने का गम लग जाता है, इसकी फिक्र लग जाती है। वो ये नहीं सोचता कि यहाँ मिला अब इधर ही सारा ख़त्म करना है, बल्कि वो ये कहता है कि यहाँ मैं इस्तेमाल करूँगा, वहाँ मैं जमा करूँगा। उसकी दुनिया इधर भी अच्छी होती है। अल्लाह बिल्कुल नहीं चाहता कि मुसलमान दुनिया में रोएं, तरसें, तड़पें, बुरे हाल में, बुरी सड़कें इनकी, बुरी इनकी गलियाँ, और ये रोते धोते देखें और काफिर जो हैं वो बहुत अच्छे हाल में हो। आज हमारे बच्चे पूछते हैं कि अगर मुसलमान अल्लाह के प्यारे हैं तो फिर इनका हाल क्यों बुरा है, इनके अंदर बिगाड़ क्यों है, इनके मुल्कों में गुर्बत क्यों है, वो ये सोचते हैं। देखिए आज हम तारीख़ के उस दौर से गुजर रहे हैं जो माफ़ कीजिए आइडियल नहीं है। एक आइडियल दौर गुजर गया नबी सल्लम से लेकर 1000 साल तक पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका था, मुसलमानों की इज्जत थी। और आप हैरान होंगे कि आज जैसे हम वेस्ट को फॉलो करना पसंद करते हैं, ऐसे लोग मुस्लिम्स को फॉलो करते थे। मुस्लिम शहजादे उस वक़्त रोल मॉडल्स होते थे, मुस्लिम शहजादियों की तरह निकाब डालकर जो नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन शहजादियाँ थीं वो मुंह पे वेल डाल डाल के फिरती थी, सिर्फ ग्लैमर था उनके दिल में। जब दुनिया में वो वर्ल्ड टूर्स पे आते थे, मुस्लिम मुल्कों से गुजरते थे, उनके ये कैलीग्राफी के नुस्खे और इस तरह की जो जुब्बे हैं और जो उनकी सौब है और उनके निकाब है, जब ये ख़रीद के ले जाते थे फिर इसको ट्राई करते थे, क्योंकि उस वक़्त इस्लाम की धाक थी। आज मुझे आपको इस चीज़ को देखना है कि वो जन्नत जिसके वादे अल्लाह ने सरासर इस्लाम के साथ किए हैं, क्या मैं और आप उस जन्नत पे यकीन रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल पैदा होता है कि ये मिलेगी कैसे। आप देखिए कि कोई भी चीज़ दुनिया में मुफ्त नहीं मिलती। अमेरिका में एक जुमला मशहूर है, नथिंग इज़ फ्री। ये जो धोखा देते हैं ना, बाय वन गेट अदर फ्री, ये धोखा होता है, ये मार्केटिंग टैक्टिस है। दुनिया में कुछ फ्री नहीं है, नथिंग इज़ फ्री। तो ये कैसे हो सकता है कि वो जन्नत जो इतनी प्यारी, इतनी हसीन, आप अपने आप को जैसा चाहेंगी वैसा बनवा लें, अपना फिगर चेंज करा लें, अपनी नाक बदलवा लें, अपना कॉम्प्लेक्शन चेंज करा लें, आपको 2 बच्चे चाहिए, 2 बच्चे मिल गए, शौहर का प्यार चाहिए, और वहाँ शौहर बीवी की जो मोहब्बत होगी, अल्लाह अकबर कबीरा, वो तो एक ऐसी मोहब्बत है कि हदीस में आता है कि जब एक जन्नती अपनी बीवी के पास आएगा, साल हर साल उसके साथ रहेगा और उसका दिल उससे नहीं भरेगा। ये तो हमने चंद जुमले पेट बना लिए ना कि इतनी बीवियाँ और हूरें, मुझे आपको क्या लगे, मुझे मेरे शौहर का प्यार मिल रहा है, मुझे किसी से क्या लेना देना। ये भी एक शैतानी बात है कि 4 बीवियों की बात करो जी, कैसी बड़ी बात है, ये तो इंसान का अपने नफ्स के ऊपर खुद ही कॉम्प्लेक्स होने की बात है। आप कहें कि आप इतनी हसीन बीवी होंगी कि आपका शौहर जब आपके पास जाएगा उसको कोई दूसरी औरत याद ही नहीं रहेगी, और जन्नत में बाजार भी होंगे, मज़े की बात, लेकिन वहाँ खुराफात नहीं होंगी। जन्नती औरतें भी, जन्नती मर्द भी बाज़ारों में जाएंगे, और वहाँ जन्नत में जुमे के दिन एक बाज़ार लगा करेगा। जुमे के दिन को जन्नत में जाकर यौमुल मजीद कहा जाएगा। उस पर आपने इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह का एक बड़ा प्यारा नशीद सुना होगा ना, कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला से बातचीत करेंगे, और वहाँ वो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में परेशान होंगे कि अल्लाह हम क्या करते थे, हमारे साथ क्या मामला था, और दिस एंड दैट, लेकिन फिर अल्लाह ताला उनसे राज़ी होंगे। जन्नत की सारी चीज़ें जो हैं ना, इसके बाद जो सबसे बड़ी नेमत है ना, वो अल्लाह का चेहरे का दीदार और उसकी रज़ा है। देखिए आप किसी के भी घर में जाएं, बेहतरीन कोचिस, बेस्ट ड्रिंक्स, आगे पीछे मुलाजम गुलाम फिर रहे हैं, पर घर वाला आपसे बात ही नहीं करता, कोई स्माइल पास नहीं हो रहा, वो आपको देखकर कोई खुशी का इजहार नहीं कर रहा, क्या आप वहाँ बैठे रहेंगे? आप कुर्सियों मेज़ों को मिलने जाते हैं, आप तो जाते हैं वहाँ अपनी दोस्त को मिलने, आप तो अपनी होस्ट को मिलकर खुशी महसूस करते हैं। जन्नत असल में क्या है, अगर मैं एक जुमला बोलूँ और आप इसको याद कर लें, तो मुझे लगता है आज के बाद हमारी जन्नत की तलब और बढ़ेगी। जन्नत क्या है? मीटिंग प्लेस विद अल्लाह सुभान अल्लाह। اللہ کو کہاں ملنا ہے؟ جنت میں ملنا ہے. ایک ایمان والا ساری زندگی کوششیں کرتا ہے, خواہش کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت دینا, لیکن اس دنیا میں اللہ نے اس کا ایک تھوڑا سا ٹریلر رکھا ہے. وہ کہا ہے, تو بڑی خوبصورت بات کہنے لگی ہوں, دنیا میں جب آپ دین قرآن اللہ کی بات سیکھتے ہیں نا, تو اس وقت آپ کے دل کی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے نا. آپ سبھی کہیں نہ کہیں کلاسز میں جاتے ہیں, بہت ساروں کو تو میں بھی جانتی ہوں اور سبھی جاتے ہوں گے, کہیں نہ کہیں تو جاتے ہی ہوں گے. وہ فیلنگس یاد کریں جب قرآن کی تفسیر ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اس دنیا سے کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں. ٹرینکولیٹی, پیس آف ہارٹ, خوشی, پلیئر, جنت میں ہر وقت وہ چیز ہوگی. علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے جنت کا ٹریلر علم کی محفلوں میں رکھا ہوا ہے. اس وقت بندہ دنیا سے بالکل بے نیاز ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب آپ اللہ کے اس کلام کو سنتے ہیں, یہ ہے اصل میں اللہ کا کلام. آپ دیکھیں, دل چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے, دل چاہتا کہ نہیں؟ تو وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن میں ہے. اور کبھی آپ کا دل چاہتا ہے اللہ سے بات کرنے کو, تو وہ نماز میں ہے. نماز میں اللہ سے بات کرتی ہوں, قرآن اللہ مجھ سے بات کرتا ہے. اور یہ جنت تھی جس کا یقین آ گیا تھا, تو صحابہ کو پھر کوئی تبدیلی لانا مشکل نہیں لگا. آج ہمارا مسئلہ پتا کیا ہے؟ کہتے تو ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہے جنت کا. ہم کہتے اٹس اوکے, فینٹیسی لینڈ. ایک ماں نے, اور ویسٹ کے بچے جو نا آپ کے یہاں سے 5-10 سال آگے ہیں, جو وہ سوال کرتے ہیں تو وہ آپ اللہ نہ کرے کہ یہاں 4-5 سال میں سنیں گے. ایک ماں نے خود مجھ سے بات کی اور اپنے بگڑے ہوئے بچے کے بارے میں دکھ کر رہی تھی. کہنے لگی کہ جب میں اللہ کی باتیں کرتی ہوں اور اللہ اللہ, بچوں میں کوئی بھی ہوگا, اینی ون, کہتے کہ وائی یو آر ٹاکنگ ٹو یور انویزیبل فرینڈ. کہتے تم اپنے ایک نہ نظر آنے والے دوست سے باتیں کرتی رہتی ہو, مجھے نہیں چاہیے. اور اس سے بڑھ کے جرت کا جملہ, اللہ نہ کرے ہماری نسلیں وہ بولے. ماں نے کہا کوئی بات کر کے کہ بیٹا پھر وی ول گو ٹو جنہ دے. نو ماما, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو جنہ, اٹ شوڈ بی بورنگ. ماما ول بی دا میوزک دیئر, میوزک ہوگا. اوکے, وی کین واچ دا ویڈیوز, موویز, دس اینڈ دیٹ. دو چار باتیں کر کے کہا, ماما یو شوڈ گو, وہاں تم نے وہاں بھی بیٹھ کے درس دینے اور وہاں تم نے لیکچر کھانے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو جنہ. واللہ ایک ماں نے مجھے خود نہ کہا ہوتا تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتی کہ سازہ بتائیں میں کیا کہوں اس کو. بچے اب جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے, کہتے وہ بورنگ ہوگی. اور یقین کریں ویسٹ میں پوری یہ ایک پلاننگ ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کی نسلوں سے جنت اور جہنم کا تو وہ کب کا ختم کر چکے. میں آپ کو پوری تسلی سے یہ یقین دلا سکتی ہوں کہ کرسچینٹی میں سے اب موسٹلی پیپل جو کرسچینز ہیں وہ جنت کو دے اسٹل بلیو بٹ جہنم کو نہیں مانتے. بڑے بڑے ان کے سیکٹ ہیں, وہ کہتے جہنم نہیں ہے بھائی, یہ ظلم ہے اور اللہ نہیں ہے جی, اللہ ایسا سخت نہیں, اللہ از ناٹ سو مین, اور بس جنت مانتے ہیں. اور جنت کیسے جانا ہے؟ جیزس نے ہماری پارڈن میں سارے گناہ معاف کرا دیے, ہم جنت میں جائیں گے. بٹ اس وقت ان کے جو پلانز ہیں وہ کیا ہے کہ وہ ہماری نسلوں کو جنت سے دور کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری دنیا جنت ہے, وی ہیو ایوری تھنگ ہیئر, وائی ول گو ٹو جنت. جب یہاں سب کچھ مجھے مل رہا ہے, آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی ایسا ہوا تھا. ایک شخص قارون نام کا, سورت قصص کھولی ہے, اللہ نے اس کا پورا منظر بیان کیا ہے. اس نے کہا انما اوتیت ہوا علم, مجھے دنیا میں سب کچھ اپنے علم پہ مل گیا, مجھے کیا. وہ کہتے ہیں وی ہیو ڈگری, آئی ایم انجینئر, آئی فلام, میری اتنی تنخواہ ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو جنہ, سوری, آئی ول گو بائی مائی سیلف. یہ آج کے حالات ہو چکے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم اپنے بچوں سے جنت کی بات نہیں کرتے اور دن رات ہماری کوششیں اس دنیا کو جنت بنانے کی ہیں, تو کیا ہم شاید بڑی غلط بات بولنے لگی ہوں میں, لیکن میرے اندر دل کے اندر ایک انگارہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اب دنیا میں ہماری اولادیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. شادی میں کوئی انوائٹ کرے, اللہ سلامت رکھے میاں صاحب کو, وہ آپ کے ساتھ جائیں گے. میاں نے جانا ہے تو بیوی کو لے جائیں گے, بیوی نے جانا ہے تو میاں. آج ہمارے بچے ہمارے ساتھ شادیوں میں نہیں جاتے الا ماشاء اللہ, پارٹیز میں نہیں جاتے. آنے والے دنوں میں ایک لیکچر ہونے والا ہے جنریشن گیپ کے نام پہ, اس میں میں نے انشاءاللہ کافی سارے پوائنٹ شیئر کرنے ہیں. انہی میں سے ایک بات بتا رہی ہوں, آج ریئلی اگر ہم فیل کریں تو سائیکلوجیکلی وی آر الون. ایک گھر ہے, الحمدللہ 8-10 بیڈ روم ہیں, اور ماں باپ کی بچوں سے ملاقات نہیں ہوتی. اور اگر میاں بیوی ایک کمرے میں نہ سوتے ہوتے تو شاید ان کی بھی نہ ہوتی. اکثر دعوتوں میں ماں باپ کا الگ پلان ہے, بچوں کا الگ ہے. आप होटलिंग करते हैं, इंसान सोचता है चले वीकेंड है, सारी फैमिली साथ बैठती है, चले होटल में जाते हैं, आखिर में देखें फिर आप ही होंगे, या कोई एक छोटा भी जिसकी कोई साथी नहीं उसका कोई दोस्त बना वो आपके साथ चला जाएगा, या छोटी, हर बच्चे के अपने प्लान हैं। सच बताएं कि आज हमारे बच्चों के प्लान हमसे डिफरेंट नहीं हो गए? तो जुमला क्या बोलने लगी थी इसको तवज्जो से सुनिएगा, कहीं जन्नत में भी हमें अकेले ही ना जाना पड़े। बच्चे कहते नो सॉरी मामा, आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड, आई विल गो देयर वेयर दे वॉन्ट टू गो। आप सोच सकते हैं कि आज हमने अपने बच्चों को जितनी उनकी दुनिया के साथ करीब किया उतना वो शायद अल्लाह की इस जन्नत से दूर हो गए। मजाक उड़ाया जाता है बहुत कुछ, और ये जो है ना हूरों का मजाक और दाढ़ी का मजाक और फलां का, ये बड़ी जुर्रत है, ये अल्लाह की पकड़ को बुलाने वाली चीज़ है। वरना हकीकत ये है इस वक्त अब इतनी प्यारी जन्नत है तो लेनी कैसे है?